योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो।
शांति। आज विशेष दिन है, गणेश चतुर्थी का उत्सव का स्टार्टिंग का दिन है, इसलिए सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे गणेश चतुर्थी की, गणेश का विशेषता है, हर एक जानते ही है, विघ्न विनाशक। हर एक इनके गुणों को धारण कर हम ऐसे विघ्नों पर विजयी बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। आज हम अपना टॉपिक पे आ जाएंगे। आज का टॉपिक है, अहंकार का अग्नि। पहले हम दो भाग कर देंगे इसको। एक तो ज्ञानी तो आत्माओं का अहंकार क्या होता है, अहंकार आने का मूल कारण क्या है, और दूसरी जो लौकिक में रहते हैं उनका अहंकार क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। पहले हम ज्ञानी तो आत्मा माना जो बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के ज्ञान में आते हैं, बाबा जो हम बच्चों को हर रोज मुरली में विशेष कोई ना कोई पॉइंट बताता ही है, ये हम अहंकार में नहीं आना है। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकारों पर विजयी बनने के लिए इशारा देता ही रहता है, क्योंकि राजयोग का जो लाइफ है, हमारी ब्राह्मण जीवन की जो लाइफ है, वो लाइफ में यदि उन्नति पाना चाहते हो या बाबा हम बच्चों को संपूर्ण बनाना चाहता है, उस बाबा का जो उमंग, बाबा का जो हम बच्चों को समान बनाना चाहता है, वो लक्ष्य को हम पाना है तो हम इन पर विजयी पाना होगा। पहले पहले जब व्यक्ति जो अहंकार का आने का, व्यक्ति जब अहंकार में आता है, मूल कारण देखा गया क्या है, दरवाजा क्या है, देह बन। जो बिल्डिंग जब बनाते हैं तो पहले क्या करते, फाउंडेशन को पक्का करते हैं। ये अहंकार का जो फाउंडेशन है देह बन। हम ब्राह्मणों में जब क्या समझ मिली है, क्या समझ मिली है, हम आत्मा है, ये देह नहीं है, हम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा है, साधारण आत्मा नहीं है, हम सर्व गुणों से संपन्न है। बाबा ने हम बच्चों को ये भी याद दिलाया, आप लोग, आप आत्माएं हैं, क्या थे, दैवी संस्कार वाली आत्माएं थे। ये हम भूल गए हैं। अभी भूलने के कारण क्या हुआ, परवश हो गए, परवश होके ज्ञान में आग, परवश होने के कारण अज्ञान अंधेरे में थे। बाबा ने हमको उस दर से, उस दुनिया से निकालकर हमारा बाबा का बच्चा बनाया, बच्चा बनाने के बाद बाबा ने सारा ज्ञान हम बच्चों को दे ही रहा। हम सिर्फ मुरली के ऊपर ही, रोज की मुरली के ऊपर ही अटेंशन रखेंगे तो हम इस अहंकार के ऊपर सहज विजयी पा सकते हैं। अहंकार का अग्नि कहा, अग्नि क्यों कहा? क्योंकि वो जब व्यक्ति अहंकार में आता है तो वो खुद को भी विवेक को जलाती है और दूसरों को भी जला देती है। अर्थात जैसा अभी बाबा ने, बाबा के बच्चे बनने के बाद क्या होता है, क्या होता है, हमारे अंदर जो कलाएं हैं विकसित होता है, जो भी कला था। आप जरा सोचो, हम पहले जब ब्राह्मण बनने से पहले कैसे थे, हमारे अंदर कोई कलाएं थे? सिंपल ऐसी कलाएं होंगे, मगर बाबा के जो गुह्य थे, गुह्य ज्ञान जो दिया है, उसके बाद हमारे अंदर क्या हुआ? अभी यहीं हम बैठे हैं, क्या सचमुच हम लोग पहले ऐसे भाषण करने की कला थी? या आते आते दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होते जा रहे? ये किसने दिया, किसने कराया? बाबा ने हम आत्माओं के अंदर शक्ति बनाया। बाबा हमेशा कहता है, क्या स्लोगन, क्या है स्लोगन, एक कदम हिम्मत की रखेंगे तो हजारों कदम बाबा मदद करने के लिए तैयार है। तो हम क्या सचमुच ऐसे बाबा की ज्ञान को हमारे जीवन में धारण कर अहंकार के अग्नि में जलते तो नहीं है? जलने का मूल कारण है, जैसा एक है, पहला हम ले ले, जैसा कोई सेंटर पे बहने रहती है, मैं मुरली बहुत अच्छा चला सकती हूं, ये सूक्ष्म अहंकार आया तो क्या हुआ, वहां गिरावट की तरफ जाएंगे। भले उस समय, उस समय की जो बलिहारी है, माना उस समय उसका, ये बहन जी बहुत अच्छा सुनाती है, बहुत अच्छा, इस बहन से ही सुनना अच्छा लगता है वहां, मगर ये बात भूल जाते हैं। कौन सी बात? बाबा की मुरली है, बाबा ने जो मुरली सुनाया वो मैं निमित्त होकर सुना रहा हूं। दादी हमेशा क्या कहती थी, बड़ी दादी, मैं हेड नहीं हूं, हेड माना हेडेक होता है, मैं निमित्त सेवादारी हूं। बाबा भी क्या क्या लिखता था, क्या कहता था, ओल्ड सर्वेंट, साकार बाबा की ये शब्द था। तो क्या हम सचमुच जो बाबा की देन को हम अहंकार में आकर अपनी जो उन्नति होना है, उन्नति में रुकावट तो नहीं डाल रहे हैं? उन्नति तो होना ही है, बाबा का बच्चा बनना माना अवश्य उन्नति होगा, मगर हम अपने अहम भाव में आकर अपनी जो रियल बुद्धि का जो था वो भूल गए। मैं एक सूक्ष्म बात बताता हूं, एक ब्राह्मण बच्चों में तीन प्रकार का चांस मिलती है जब ज्ञान में आने के बाद। एक पहला चांस मिलती है कि अंदर की जो आवाज आती है, ये आप अहम में आ रहे हो या अहंकार में आ रहे हो, उसको सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस कर मैं हूं ना, मेरा अभिमान आ जाता है, मैं अच्छा चला सकता हूं, अच्छा सेवा कर सकता हूं, अच्छा बोल सकता हूं, ये सब सूक्ष्म उनके अंदर से, ये मुख के अंदर से शब्द निकलता है। अरे इतना तो स्वमान होना चाहिए ना, वास्तव में श्रेष्ठ स्वमान क्या है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाप के बच्चा हूं, वो भूल गया, मैं चला सकता हूं, मैं कला सेवा कर सकता हूं, मैं प्रदर्शनी समझा सकता हूं, मैं मेरा समझाना उसको तीर लगेगा, ये सब बातें ब्राह्मण जीवन के लिए विघ्न रूप बन जाती है। कई बार होता है सेंटरों पे, मैं जो इस वीआईपी के पास मेरा अच्छा वो मानता है, जैसा माना उसको परिचय होगा, उनके पास मैं जाने से ही सेवा होगा, मगर बाबा ने ये कहा है, कोई भी बच्चा हो, बाबा का ज्ञान यदि बाबा को देना होगा, उस बच्चे को टच करके वो ज्ञान का पॉइंट उसको तीर लग जाएगा। ऐसा भी देखा गया कई बार जो निर्मल बुद्धि होते हैं वो स्वच्छ बुद्धि होते हैं, कलश कपट जो नहीं होते हैं उसको बाबा स्वतः ही वो ज्ञान की पॉइंट टच करके या उसके अंदर से स्वतः उनके मुख द्वारा उस आत्मा का कल्याण करता है। इसीलिए ज्ञान में आने के बाद सबसे बड़ी चीज है कि अहंकार कभी नहीं आना है। जैसा साकार बाबा को देखा है, साकार बाबा का जो हिस्ट्री में आप पढ़ा होगा, जब एक बहन को उल्टी आया, बाबा ने अपने हाथ में लेकर फेंका, माना बाबा इतना पालना दिया है, वो कितना निरहंकारी था। बाबा का अंतिम शब्द क्या था? अंतिम शब्द क्या था? तीन शब्द बोला था बाबा ने, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी, बाबा की जो साकार बाबा की शब्द था। तो क्या सचमुच अपने आप से ये पूछो कि मैं ज्ञान में आकर मेरे अंदर कहां अहंकार का जो छुपा हुआ तो नहीं है? ये चेक कर सकते हैं ब्राह्मण बच्चे का अहंकार आने के बाद क्या किस पॉइंट हमारे बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कौन सी बुद्धि के ऊपर कौन सी सूक्ष्म आता है। भाई मैं सेवा करूंगा तो ये सेंटर का उन्नति होगा, या मैं समर्पित हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे कोई मिलना चाहिए, मेरे अंदर वो कला है, मगर वो कला किसने दिया? मेरी कला है क्या? मगर बाबा ने दिया है। बाबा शब्द जहां ऐड करेंगे वहां क्या होगा? उसके ऊपर अहंकार के ऊपर या माया के ऊपर सता विजयी पाएंगे। और सूक्ष्म क्या आता है? अहम भाव, जैसा देह अभिमान की दरवाजा खुल जाता है, खुलते ही वहां ऐसे तो बाबा ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चौथा में आता है अहंकार का, मगर अहंकार ऐसी सूक्ष्म ये है कि जो हमारा विकसित होना चाहिए कला है, हमारे अंदर श्रेष्ठता बढ़ना चाहिए, वो श्रेष्ठता को कम कर देती है, क्योंकि अहम आ जाता है, मैं ही कर सकता हूं, मेरे अंदर ये कला है। इसके लिए हम क्या क्या करना चाहिए? हम ये अंडरलाइन करना चाहिए, मैं आत्मा बाबा के निमित्त बच्चा हूं। जब निमित्त बच्चा समझेंगे तो बाबा ने मेरे को जो गुण है या शक्तियां है जो भी दिया है, मेरे को दूसरों को बांटने के लिए दिया, ना कि ये हमारा प्रॉपर्टी है। जो व्यक्ति ट्रस्टी समझकर चलता है, ट्रस्टी माना निमित्त समझकर चलता है, उसको कभी भी अहंकार नहीं आ सकता है। अहंकार आने का सूक्ष्म जब आता है व्यक्ति का क्या होता है? पहले बार बुद्धि के ऊपर हो जाता है, बुद्धि नष्ट होता है। क्या बुद्धि जब नष्ट होता है तो अपना अवगुणों को भी नहीं पहचानता है, दूसरे गुणों को भी नहीं पहचानता है। उस समय क्या होता है? कोई अच्छा व्यक्ति, अभी समझो हम लोग समर्पित है, समर्पित है तो वो आया, वो एक भाई ने आया, भाई जी आज आप का थोड़ा अहम दिखाई पड़ता है, आप बोल रहे हो मैं हूं, ये बाबा का समर्पित बच्चा हो आप, मगर बाबा ने आपको निमित्त बनाया, वहां सूक्ष्म अहंकार यदि आया, मेरी ड्यूटी है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, ये अहम है। आज बाबा ना होता, बाबा का ज्ञान ना होता तो हम कर सकते थे? कर सकते थे? नहीं कर सकते। बाबा ने हमको वो ज्ञान देकर हमको ऐसा बुद्धि दिया है, कौन सा बाबा हमेशा कहता है, कौन सी शब्द? दिव्य बुद्धि दिया हुआ है। दिव्य बुद्धि द्वारा हम, बाबा ने ये भी कहा, तीनों लोकों को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब दिव्य बुद्धि है तो आप यदि दिव्य बुद्धि का उपयोग कर रहे हो तो अगला व्यक्ति क्या बोलना चाहता है वो आप तुरंत पहचान लेते हो। बाबा के सामने क्या होता था, साकार बाबा के सामने, हम बड़ी दादी के सामने कई बार देखा है, कई लोग जो आते थे बाबा को लास्ट समय की जो पीरियड में माना लास्ट जनवरी मास में बाबा के पास कई प्रश्न लेके जाते थे, वहां बाबा का दृष्टि लेते ही उनका क्या होता था, वो सब प्रश्न स्वतः ही हल हो जाता था। माना बाबा की जो शक्ति था, इसी तरह हमारा स्टेज ये होना चाहिए कि हमारा कभी भी उसके तरफ जो बाबा ने कहा है, बाबा का देन है, हम उस अनुसार चलेंगे तो कभी भी अहंकार हमारे ऊपर बुद्धि के ऊपर वार नहीं कर सकती। बुद्धि के ऊपर वार करते ही पहला नष्ट होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या है, मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, ये भूल जाता है। उस समय क्या आता है, सूक्ष्म देह का बान आता है। बाबा ने कितने मुरलियों में कहा देह बान से मुक्त होने के लिए या आत्म अभिमानी की स्थिति बनाने के लिए क्या करना है, कैसे बात। बाबा ने यह भी बताया है कि आपका जो आदि फाउंडेशन है अमृत वेला, आप पावरफुल योग करेंगे तो वो योग आपको सारा दिन मदद करेंगी। इसीलिए बाबा ने क्या किया, सारा दिन के लिए ट्रैफिक कंट्रोल की थी 5 बार। उसके बाद बाबा ने यह भी कहा एक एक घंटे में कम से कम 1 मिनट भी इस शरीर से डिटैच होने की। ब्राह्मण जीवन में जब अहंकार आया, एक तो बुद्धि का होता है, दूसरी क्या होता है, सूक्ष्म जो हमारा नशा, जो सूक्ष्म नशा माना जैसा कि अभी मैं हूं, मैं अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में हूं, अकोमोडेशन मेरे बिना तो जा नहीं सकेंगे रूम में, ये तो है ही है, मगर मैं इनकी ऊपर थोड़ा मेरे को इनसे अनबनी है, वो रूम नहीं देना इनको, वही रूम देना है, देखता हूं क्या करता है। ये सूक्ष्म या हमारा ये सूक्ष्म बातें है। इसी तरह ब्राह्मण जीवन के अंदर समर्पित जीवन का देखो या समर्पित बहनों का देखो, ये हमारे अंदर ये भाव सूक्ष्म भाव आ गया मैं का, वो कभी भी ब्राह्मण जीवन को आगे बढ़ने नहीं देगा। अंडरलाइन कर लेना चाहिए, हम अपने जीवन के अंदर, मैं भी कई बार चेक करता हूं अपने आप को कि मेरा सूक्ष्म इनके प्रति क्या चल रहा मेरे मन में, भले वो कैसे भी बोले मेरे को, क्या मैं उस सूक्ष्म अहम भाव में आकर उसके प्रति मेरा ड्यूटी के जो करना चाहिए वो नहीं कर उसको बदले की भावना से या सूक्ष्म भावना से तो नहीं देख रहा हूं। ये बड़ा सूक्ष्म बातें हैं, बुद्धि के ऊपर वार करती है, उसके बाद सूक्ष्म अंदर की अहम भाव जागृत हो जाता है। तीसरी जो होता है कि ये दूसरों को देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो वो इतना ऊंचा बना है, मैं इतना ऊंचा नहीं बनूं, मैं भी ऊंचा बन जाऊं तो मेरे को भी वो अंदर एक इच्छा जागृत होती। इच्छा जागृत होने के कारण उस समय वो बनने के लिए, वो स्टेटस पाने के लिए कितना भी पुरुषार्थ कर लेगा, वो स्टेटस जैसे ही पाएगा उसके पीछे क्या राज है, अहम भाव की। मैं ऐसा, एक है श्रेष्ठ लक्ष्य रखना, जैसा आज हम हमारा जो ग्रुप चल रहा पुरुषार्थ, इसने अच्छा भाषण किया, मैं भी ऐसा इनके जैसा भाषण करना एक श्रेष्ठ लक्ष्य है, या इनसे भी मैं अच्छा भाषण कर सकता हूं, ये श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं है। हर आत्मा को श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा ने बड़ा युक्ति बताया है, आप पुरुषार्थ करो, हिम्मत की एक कदम आगे रखो, जरूर बाबा मदद करेगा। इसलिए ब्राह्मण जीवन के अंदर कभी भी ये सूक्ष्म बातों का चेकिंग करते रहना चाहिए, तब जाके बाबा जो हमारे से सेवाएं कराना चाहता है या बाप समान बनना चाहते हैं वो आप कर सकते हो, और वो संपूर्णता की अवस्था तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान समय बाबा ने इतना अच्छा चांस दिया है। क्या चांस दिया है? अभी देखो सब हर एक अपने घर में है, सेंटर में बहने हैं या मधुबन में हम लोग बैठे, कहां इतना सेवाएं भी कम है, मगर इस समय का लाभ उठाकर हमारे स्थिति को इतना ऊंचा बनाया, क्योंकि आगे जाके जो परिस्थितियां आना है बहुत खतरनाक कहेंगे उसको, वो परिस्थितियों के समय हम ऐसा देने लायक अभी इस समय स्थिति को बनाया, इस सूक्ष्म बातों के ऊपर हम विजयी पाया। इसके लिए हम इसके ऊपर विजयी पाने के लिए कौन सी बातों का अटेंशन रखना चाहिए ब्राह्मण जीवन के अंदर? पहला अटेंशन तो बोल दिया मैंने, अमृत वेले का योग। दूसरा अटेंशन डेली की मुरली के अंदर बाबा ने इस पॉइंट के लिए क्या महावाक्य उच्चारा है, उसको अटेंशन रखकर उस पॉइंट को, जो याद आता है मेरे को, रतनबेन दादी से एक बार हम लोग मिले थे, दादी को हम पूछा अब बाबा जो मुरली सुनाता था उस समय आप लोग क्या करते थे, बोला हम चार पन्ना अलग अलग कर देते थे, उसमें ज्ञान योग धारणा का जो पॉइंट आता था, जिस पन्ने का जिस ज्ञान का होगा तो ज्ञान का अलग पॉइंट, योग का होगा तो योग का अलग पॉइंट, धारणा का अलग, इस तरह अलग अलग पॉइंट्स लिखते थे। उसके बाद लिखने के बाद फिर मुरली के बाद उसके ऊपर चर्चा, आज बाबा ने ये कहा, क्या अभी अपने आप से पूछिए, क्या हम इस विधि से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या ऐसी धारणाएं हमारे अंदर आए? गुलजार दादी ने भी एक बार कहा था, आप तीन पेज का मुरली याद नहीं भी हो तो कम से कम बाबा जो मुरली का हेडिंग सुनाता है या प्रश्नोत्तर सुनाता है या वरदान सुनाता है, स्लोगन सुनाता है, उसका कम से कम एक दो पॉइंट तो बुद्धि में रखो। इसमें मैं कहता हूं जब सूक्ष्म आप अंडरलाइन कर लेंगे, आज मुझे परिवर्तन करके दिखाना है, तब उसके ऊपर स्वतः ही विजयी पा सकता है। एक लक्ष्य श्रेष्ठ होना चाहिए, समय का महत्व को जानकर लक्ष्य श्रेष्ठ रखे तो उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकेंगे। इसलिए ब्राह्मण जीवन का जो तीनों बातों के ऊपर विजयी पाकर हम मुरली का महावाक्यों को जीवन के अंदर धारण करें तो इनके ऊपर स्वतः ही विजयी पा सकेंगे। और तीसरी बात, जो हम ज्ञान की मनन के साथ साथ वो मनन किया हुआ मक्खन दूसरों को सुनाकर उनका कल्याण करते हैं, जैसा आज का मुरली सुना, किसी न किसी का एक भाई का लक्ष्य है, पुराना भाई है, वो हमेशा एक छोटे कागज पे लिख के दूसरों को पूछता है आज का मुरली क्या सुना, फिर वो रिपीट करता है। इस तरह हमारे अंदर हमारे मुख से सदैव यदि ज्ञान रतन निकल रहे, वो रत्नों को दूसरों को देने का लक्ष्य है, तो उसी अनुसार मुरली सुनेगा, उसी अनुसार पॉइंट्स नोट करेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म अहम जो है उसके ऊपर विजय पाने के लिए एक सहज विधि है। इसी तरह जब आप अहम जब आता है, हम मैंने तीन बातों का बीच में फिर सुना रहा हूं, जो हमारा मन को सप्रेस कर देते हैं। दूसरी बात, जब हम बाबा की मुरलियों में बीच बीच में वो पॉइंट्स आता है उसको नोट नहीं करते अहम के ऊपर, उसके कारण भी हम अहम भाव में आ जाते हैं, वो नोट नहीं करते या समय पे याद नहीं रहता है। और तीसरी बात, जब कोई ना कोई, जैसा हमारे साथ कोई दोस्ती होता है, भाई जी आजकल आप ज्यादा इसमें हो गया, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, थोड़ा सा आपका ब्राह्मण जीवन के लिए ये अच्छी बात नहीं है, जो स्नेही होने के कारण वो सुनाता है, मगर वो हम इनगोर करते थे, वो पहचानते नहीं है। इसलिए इसके लिए हम जो मैं सीरियल सुना रहा हूं उसके लिए चौथा पॉइंट जो है क्या करना है, एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करना है। जब अहम आता है उस समय बात नहीं कर सकता है, मगर बाबा की मुरलियों का अटेंशन रखिए, एकांत में अपने आप से बात करो तो पता चलता है मेरा आजकल सूक्ष्म भाव कहाँ चल रहा, किधर है, या अहम में है, अहंकार में है, या देह अभिमान में है, या काम विषय की सूक्ष्म नशा है, या क्रोध की नशा है। इन सब को अपने आप ये एकांत में बैठ के, वहां नहीं, कहां चित पे जाओ, कहां प्रकृति के नजदीक जाओ, या जैसा गांव में होता है तालाब के नजदीक, या घरों में होता है छत के नजदीक, यहां हम यहां कहां एकांत में बैठना चाहिए, यहां हम मधुबन वासी के लिए एकांत कौन सा स्थान है, टैंकी के ऊपर जाओ या वॉकिंग, यहां जैसा देखो आजकल तो ओम शांति भवन एकदम साइलेंस है, यहां अकेला जाओ, घूमो फिरो, चिंतन करो, बगीचे में बैठो, या आप सबसे अच्छा स्थान है जब वो 5 बजे के बाद योग पूरा होता है, बाबा के कमरे में जाके देखो, उस समय कोई नहीं होगा, आप बैठो, उस समय जाके बाबा से रू रिहान करो। यदि आपको परिवर्तन करना का लक्ष्य इंटरनली है तो उस समय बाबा ऐसी मदद करता है, आप सोचा भी नहीं होगा बाबा ऐसा भी मदद करता होगा। इसलिए इन बातों को जब ब्राह्मण जीवन में इससे मुक्त होने का लक्ष्य रखेंगे तो क्या होता है, कभी जैसा सूक्ष्म नशा में ड्यूटी की नशा होती है और स्थूल सेवा की कला की नशा होती है, विशेषताओं की नशा होती है, और भी कई प्रकार, हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो अनेक पॉइंट्स निकलेगा हरेक की। हाँ, इस प्रकार हम हरेक की हम अपने आप चिंतन करके उससे मुक्त होने का युक्ति निकालना है। टोटल भाव यही है कि हम कभी भी इस चीज से हमारे को कितना नुकसान होता है अपने आप को चेक करके इससे मुक्त होने की तरीका बाबा से या कि मुरलियों से आप निकाल सकते हो, या आप निकल नहीं रहे हो, या मुरली भी सुनने का इच्छा, कई बार ऐसा होता है अहम में आया है तो मुरली सुनने का भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, कि कोई बोले तो भी अच्छा नहीं लगेगा, मगर यदि आप उस समय 1 मिनट के लिए भी बाबा के कमरे में जाओ, बाबा अवश्य टच कर देता है। कई बार ये अपना जीवन में भी मैंने देखा है, हमको कोई भी ऐसी विघ्न आया, उस समय मुरली में पढ़ना वो भी इतना ये नहीं होता, योग लगाना वो भी बुद्धि की क्या है, उसके ऊपर वार है बुद्धि के ऊपर, इसलिए उस समय बाबा की मदद लो। या दूसरी बात कि जो अनुभवों की, दादी का अनुभवों की कैसेट सुनो, या अनुभवों की किताबें पढ़ो, या पुराने मुरलियां जो अव्यक्त मुरलियां है 69 से 72 के बीच में धारणा युक्त मुरलियां चली है बाबा ने, ऐसा तो सब मुरलियां धारणा युक्त है मगर उसमें बहुत गहरी राज युक्त मुरलियां है, वो मुरलियों में कोई भी मुरली ऐसा उठा के खोलो, आपको उस दिन मना उस समय के अनुसार का वचन जरूर निकलेगा। और साथ साथ हम ये भी एक लक्ष्य रखे, हम एकांत में बैठ के कुछ बाबा से, बाबा को प्यार भरा चिट्ठी लिखे, क्योंकि अहम आया सो उसको पता नहीं चलेगा, मगर बाबा से हम रू रिहान कर उसका एक तरफ तो बुद्धि चलेगा मैं हूं ये रॉन्ग है, ये चलता रहता है, मगर उस समय बाबा को ये सूक्ष्म चिट्ठी लिखो, जरूर बाबा आपको इस बात के ऊपर विजयी होने के लिए मदद अवश्य करेगा। ये हुआ ब्राह्मण जीवन की। और हम बाहर वालों की जो अज्ञान में रहते हैं, जैसा परिवार रहता है, परिवार में अहम कैसा आता है, मैं ये घर का मालिक हूं, जैसा पति पत्नी बाल बच्चे रहते, मैं कमाता हूं आपको काम करना है, ये सूक्ष्म अहम आता है उनके अंदर, मैं जो बोल रहा हूं वो करना है। फिर दूसरा आता है, पत्नी कहेगी मैं इतना काम करता हूं सारा दिन, आप बस आके ऑर्डर चलाते हो। वहां सूक्ष्म अहम आता है, और ये अहम को हम निकालने के लिए यदि हम इनको लौकिक वालों को ये समझाए कि आप दोनों क्या है, किसके लिए क्या कर रहे, दोनों पहिया ठीक चले तो गाड़ी ठीक चलेगी, इतना हम हमारा फर्ज है। किसका? हम ब्राह्मण बच्चों का फर्ज है उन लोगों को इस तरह, भले अज्ञानी है उनको ज्ञान पता नहीं, मगर इस ढंग से उनको समझाना होगा कि आप परिवार वाले हो, परिवार माना एक दो पहिया इक्वल है, अलग अलग नहीं है। इसलिए जो परिवार को चलाने के लिए, हम घर को चलाने के लिए दोनों का महत्व है। आप काम करे तो, काम नहीं करे तो घर नहीं चलेगा, आप घर का काम नहीं करे तो घर नहीं चलेगा, बच्चों को नहीं संभालेंगे। इसलिए उनको इस तरह घर, विशेष जो घर में रहते हैं उन लोगों को अहम भाव को निकालने के लिए विशेष इस बात का समझानी होगी। उनसे ये निकालने के लिए फिर आप निमंत्रण देव बाबा का ज्ञान को सुनाओ तो उनको ये टच हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं या 15 साल के ऊपर वाले, उनको क्या अहम भाव आता है? उनको आता है कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं कर सकता हूं ये काम। मगर उनको क्या समझाएंगे? उनका अहम निकालने के लिए कौन सा ऐसा विशेष बात पर उनको ध्यान दिला सकते हैं, क्या दिला सकते हैं, कौन सी ऐसी पॉइंट है? मगर आपकी शक्ति, आप सूक्ष्म उनके जो देहबान की जो है उनके अंदर, वो देहबान बोले तो वो समझेंगे नहीं, मगर वो शक्ति है, आज है कल नष्ट हो जाएगा। मगर इतना घमंड नहीं लाओ, घमंड से कितने लोग आज, कितने महाराजा लोग इस घमंड के कारण ही अपना राज्य खो बैठे हैं। इस तरह उनको सूक्ष्म अहम भाव क्या होता है उसका राज उनको समझाने से, उसको समझाने से पहले हमारे अंदर भावना क्या होना चाहिए, उसकी कल्याण की भावना होकर, उसकी उन्नति की भावना से उनको समझाने से उस आत्मा के अंदर परिवर्तन आ सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को हम इस प्रकार समझाना होगा कि ये अहम भाव क्या होता है, वही समझा सकता है जो खुद उसका वश ना हो, खुद उससे मुक्त हो, वही व्यक्ति दूसरों को समझा सकता है। और किस, और बाहर वालों में किसका इफेक्ट पड़ती है, किसके ऊपर? एक हुआ परिवार का, एक हुआ युवाओं का, जो होते हैं पोस्ट, जो ऊंची पोस्ट में रहते हैं, माना जो अभी परिवार में भी ऊंची पोस्ट में जो रहते हैं उसको सूक्ष्म, जैसा मिनिस्टर है या लौकिक में जो कलेक्टर है, उन लोगों को सूक्ष्म नशा होती है। उनको किस तरह हम समझा सकेंगे? देखो, आपकी भाग्य से आपने बना है, मगर यहां आप यदि इस अहम भाव से नीचे आकर आप यदि सेवा करेंगे, आपको सूक्ष्म क्या मिलेगा? दुआएं मिलेगा। इस प्रकार आप उनको समझाने की युक्ति, कुछ ना कुछ युक्ति निकाल के बाबा के ज्ञान के आधार से उनको समझाएंगे तो जरूर अवश्य इफेक्ट पड़ेगा। दादिया क्या किया शुरू में, मनोहर दादी वहां गंगा के किनारे बैठी थी, उनको ये लोग तो जो वहां रहते हैं उनको कुछ समझती नहीं थी, गाड़ी क्या है वो भी नहीं समझी, मगर वहां बैठी, बस बैठे रही, वो लोग आया, ज्ञान सुनाया, वो घी का डब्बा भेजा, मधुबन भेज दिया। ऐसा तो नहीं है, मगर वहां दादियों की जो एक एक चीज को हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे या बाबा की जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है कि एक एक बाबा कितना पुरुषार्थ स्वयं नंबर वन बनने वाला है, फिर भी कितना इन इन विकारों के ऊपर विजयी पाने के लिए बच्चों को एग्जाम्पल बनकर दिखाया है। इस तरह हम दादियों की हिस्ट्री और बाबा की हिस्ट्री या अनुभवी रत्नों का हिस्ट्री पढ़े तो हमको पता चलता है वो लोग कैसा इस अहम के ऊपर विजयी पाया है। हम यही कहते हैं कि आज दुनिया में पोस्ट का नशा है और कहीं कला जो होता है जिसको गीत गाने का कला है, कोई साइंटिस्ट का कला है, पेंटिंग का कला है, किसी प्रकार की भी कई चीजों का जो कला होता है, कला में जब उन्नति पाते हैं सब सूक्ष्म अहम भाव अहंकार की आई जाता है। उन अहंकार को मिटाने के लिए उनको हम पहले अपना बनाकर उनकी शुभ भावना से उनको देंगे तो उनके अंदर वो परिवर्तन आएगा। जब परिवर्तन आएगा वो क्या करेगा, आपको दुआएं देगा, वो आशीर्वाद देगा, भाई जी हम कहां चले जाने वाले थे मगर आपने इतना अच्छा महावाक्य सुनाया, बस हमारा जीवन पलट गया। एक याद आता है मेरे को, एक भाई था बिजनेसमैन, वो उसको बिजनेस करता था बहुत, माना बिजनेस में बड़ी अच्छी कला था, उसको उधर से खरीद करना 200 रुपए में, इधर 400 रुपए में बेच देना। फिर ऐसे मेरे को बातचीत करते समय हमने बात किया, उस समय मैं ज्ञान में आ गया था, ये तो उनको बोला भाई जी बात बड़ा आप अच्छा कमाई कर लेते हो। वो हंस पड़ा, हाँ मेरे पास कला है, मैं ही कर सकता हूं, आप कर सकते हो क्या? भाई मैं तो नहीं कर सकता हूं, मगर उनको मैंने इतना ही बताया, देखो आपको आप 200 रुपए में खरीद कर रहे हो मगर आप उसको 250 में बेच सकते हो, 300 में बेच सकते हो, इतना ज्यादा बेचकर आप क्या कमाई करके करेंगे? वो कमाई किसमें जाता है, वो सूक्ष्म राज उनको जब समझाया उसको बुद्धि को टच हुआ। इस तरह हम ब्राह्मण बच्चों का विशेष पुरुषार्थ यही होगा, पहले खुद उसके ऊपर विजयी पाकर दूसरों को तीर लगाना। तीर तब लगा सकेंगे हमारा जो चार पांच जो बातें मैंने शुरू में बताया कि हमारा अमृत वेला अच्छा हो और हमारा मुरली का ध्यान हो और कर्म करते समय एक एक घंटे में एक एक मिनट का अभ्यास हो और मनन चिंतन हो, एकांत में बैठकर प्रकृति के सानिध्य जाकर अपने आप को चेकिंग कर इससे मुक्त होने का युक्ति निकालना हो, या अव्यक्त मुरलियां पढ़ना हो, या अनुभवों का क्लासेस सुनना है, इन सब से। क्योंकि क्या होता है, जैसा ये एक अहंकार ऐसी है, ये आरी है, हमारा आरी क्या करती है, काट देती है हमारा विवेक, जो अंदर की जो नष्ट कर देती है विवेक को, एकदम हमारा यथार्थ विवेक जो है उसको नष्ट कर देती, वो पहचान नहीं सकते हैं। आरी जैसा आरी काटने का काम है, इस तरह हमारा विवेक को काट देती है। विवेक जब नष्ट होता है तो क्या करते हैं, पहचानने की शक्ति से भूल जाते हैं, पहचान नहीं सकते। यथार्थ ज्ञान क्या होता है, उसका अपना जो गलत कर रहा हूं ये पहचान नहीं सकता है, और दूसरे श्रेष्ठ कर्म कर रहे उनके अंदर गुण वो गुणों को भी पहचान नहीं सकता है, वो भूल जाता है। इसलिए हम आज का इस टॉपिक के अनुसार हम अपने आप को क्या चेकिंग करना है, एकांत में बैठ के अपने आप से बात करने ही, या बाबा के कमरे में। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब अहम आने पर ब्राह्मण बच्चों में वो एकांत में बैठने की भी इच्छा नहीं होता, मगर सबसे अच्छी बात यह है बाबा के पास, बाबा के सन्निधि में जाके बैठो, चाहे बाबा का कमरा हो या कमरे में या मकान में या जा रूम में, नहीं तो बाबा का चित्र जो है चित्र के सामने, साकार बाबा के चित्र के सामने, दोनों बाप दादा के चित्र के सामने बैठकर अपने आप से बात करो या उनको देखो, बाबा स्वतः ही वो शक्ति भर देता है। ठीक है, ओम शांति।
विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। जीत के द्वंद में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का। जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा।